यूहन्ना अध्याय 4। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक शिष्य बनाते और उन्हें बपतिस्मा देते हैं, हालांकि यीशु खुद नहीं लेकिन उनके शिष्य बपतिस्मा देते थे, तब यीशु यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चले गए और उनको सामरिया से होकर जाना जरूरी था। इसलिए वे सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आए जो उस जगह के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। याकूब का कुआं भी वहीं था, इसलिए यीशु मार्ग के थके हुए उस कुएं पर जाकर बैठ गए। यह दोपहर का समय था। उसी समय एक सामरी स्त्री वहां पानी भरने के लिए आई। यीशु ने उससे कहा,
मुझे पानी पिलाओ।
उनके शिष्य उस समय नगर में भोजन मोल लेने गए थे। उस सामरी स्त्री ने उनसे कहा,
आप यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगते हैं?
क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी तरह का रिश्ता नहीं रखते थे। यीशु ने उत्तर दिया,
यदि तुम परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुमसे कहता है कि मुझे पानी पिलाओ, तो तुम उससे मांगती और वो तुम्हें जीवन का जल देता।
स्त्री ने उनसे कहा,
हे प्रभु, आपके पास पानी भरने के लिए तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, फिर वह जीवन का पानी आपके पास कहां से आया? क्या आप हमारे पिता याकूब से बड़े हैं जिसने हमें यह कुआं दिया? उसने खुद भी अपनी संतान और अपने जानवरों समेत उसमें से पिया था।
यीशु ने उसको उत्तर दिया,
जो कोई ये पानी पिएगा वो फिर प्यासा होगा, लेकिन जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, लेकिन जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा और अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा।
स्त्री ने उनसे कहा,
हे प्रभु, वह पानी मुझे दीजिए ताकि मैं प्यासी ना हूँ और ना मुझे पानी भरने के लिए इतनी दूर आना पड़े।
यीशु ने उससे कहा,
जाओ अपने पति को यहाँ बुला लाओ।
स्त्री ने उत्तर दिया,
मेरा कोई पति नहीं है।
यीशु ने उससे कहा,
तुम ठीक कहती हो कि मेरा कोई पति नहीं है, क्योंकि तुम 5 पति कर चुकी हो और जिसके पास तुम अब हो वो भी तुम्हारा पति नहीं है, ये तुमने सच कहा।
स्त्री ने उनसे कहा,
प्रभु, मुझे ऐसा लगता है कि आप भविष्यवक्ता हैं। हमारे बुजुर्गों ने इसी पहाड़ पर भजन किया और आप यहूदी लोग कहते हैं कि वह जगह जहां भजन करना चाहिए यरूशलम में है।
यीशु ने उससे कहा,
महिला, मेरी बात का भरोसा करो कि वो समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं, क्योंकि मुक्ति यहूदियों में से है। लेकिन ऐसा वक्त आ रहा है, लेकिन अब भी है, जब सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढते हैं। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें।
स्त्री ने उनसे कहा,
मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्तुस कहलाते हैं आने वाले हैं, जब वह आएंगे तो हमें सब बातें बताएंगे।
यीशु ने उससे कहा,
मैं जो तुमसे बोल रहा हूँ वही हूँ।
इतने में उनके शिष्य आ गए और अचंभा करने लगे कि वह स्त्री से बातें कर रहे हैं, तो भी किसी ने ना कहा, आप क्या चाहते हैं या क्यों उससे बातें कर रहे हैं। उसके बाद स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी,
आओ एक आदमी को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं है।
तब वे नगर से निकलकर यीशु के पास आने लगे। इतने में उनके शिष्य यीशु से विनती करने लगे, गुरुजी कुछ खा लीजिए। लेकिन यीशु ने उत्तर दिया,
मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसके बारे में तुम नहीं जानते।
तब शिष्यों ने आपस में कहा,
क्या उनके लिए कुछ खाने के लिए लाया है?
यीशु ने उनसे कहा,
मेरा खाना ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उनका काम पूरा करूं। क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? अपनी आंखें उठाकर खेतों पर नजर डालो, वे कटनी के लिए पक चुके हैं। काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद मनाए। क्योंकि यहां ये कहावत उचित ही है कि बोने वाला एक है और काटने वाला कोई दूसरा। मैंने तुम्हें वो खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने मेहनत नहीं की, लेकिन दूसरों ने की और तुम उनकी मेहनत के फल में भागी हुए।
उस नगर के बहुत सामरियों ने उस स्त्री के कहने से विश्वास किया। उस स्त्री ने यह गवाही दी थी कि यीशु ने वह सब कुछ जो उसने किया था उसे बता दिया। जब ये सामरी यीशु के पास आए तो उनसे विनती करने लगे, हमारे यहां रहिए। इसीलिए वह वहां 2 दिन तक रहे। उनकी शिक्षा के कारण और भी कई लोगों ने विश्वास किया। उन्होंने उस स्त्री से कहा,
अब हम तुम्हारे कहने से ही विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने खुद ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत के मुक्तिदाता हैं।
उन 2 दिनों के बाद वह वहां से निकलकर गलील को गए। यीशु ने खुद ही यह गवाही दी थी कि भविष्यवक्ता अपने देश में आदर नहीं पाता। जब वे गलील में आए तो गलीली आनंद के साथ उनसे मिले, क्योंकि जितने काम उन्होंने यरूशलेम में त्योहार के समय किए थे उन सब को उन्होंने देखा था, क्योंकि वह भी त्योहार में गए थे। तब वे फिर गलील के काना में आए, जहां उन्होंने पानी को अंगूर का रस बनाया था। वहां राजा का एक कर्मचारी था जिसका बेटा कफरनहूम में बीमार था। यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गए हैं, वह उनके पास गया और उनसे विनती करने लगा,
चलकर मेरे बेटे को अच्छा कर दीजिए, वो लड़का मरने पर है।
यीशु ने उससे कहा,
जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कभी भी विश्वास ना करोगे।
राजा के कर्मचारी ने उनसे कहा,
हे प्रभु, मेरे बेटे की मौत होने से पहले चलिए।
यीशु ने उससे कहा,
जाओ, तुम्हारा बेटा जिंदा है।
उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात को मान लिया और चला गया। वह वापस जा रहा था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे कि तुम्हारा लड़का जिंदा है। उसने उनसे पूछा,
किस समय से उसकी तबीयत ठीक होने लगी थी?
उन्होंने उससे कहा,
कल दोपहर लगभग 1 बजे उसका बुखार उतर गया।
तब वह पिता जान गया कि वह उसी समय हुआ जिस समय यीशु ने उससे कहा था कि तुम्हारा बेटा जिंदा है। तब उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। यह दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया।